अगली सूरत है सूरत अबसा, जो इंसानी मामलात में इस बात को साबित करती है कि कुछ वो लोग होते हैं जिनको आप चाहते हैं कि वो अल्लाह की बात सुने, और कुछ वो होते हैं जो चाहते हैं कि आप उनको अल्लाह की बात सुनाएं। तो आपकी सारी कोशिशों का रुख वो लोग होने चाहिए जो ख़ुद आपको इन्वाइट करते हैं कि आएँ हमें पढ़ाएँ। ये थी मैं सूरत अबस का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश मक्का के साथ बैठे थे, जो कभी कभार ही आते थे वंस अ व्हाइल, और आपसे कोई दीन की बात सीख रहे थे। इतने में अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम साहबी आ गए, जो नबीना थे, और नबीना होने की वजह से देख नहीं सके कि अल्लाह के नबी क्या कर रहे हैं, मसरूफ़ हैं, और आते ही एक मसला पूछना शुरू कर दिया। आपने उनको अपना साथी समझते हुए कि फिर क्या ये तो रोज़ आते हैं, कल बता दूंगा, बाद में बता दूंगा, आपने ज़रा सा नागवारी का इजहार किया। इब्ने मकतूम ने तो अल्लाह के नबी का वो फेस एक्सप्रेशन नहीं देखा, लेकिन अल्लाह ने क़यामत तक के लिए लोगों को दिखा दिया अबसा व तवल्ला, कि आपने तेवरी चढ़ा ली। अब इसको सोचेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन सूरत की आयतों को थोड़ा सा देखिएगा। 42 आयतें हैं, 7 पैराग्राफ हैं, मक्की सूरत है। 1 से 10 आयतों में आदाब दावत, यानी जब किसी को दीन की दावत दी जाए तो उसके क्या मैनर्स हैं। 11 to 16 में कुरान तज़किरा है, इस्तिग़ना छोड़ दो, यानी इतने लिए दिए ना रहो, आओ कुरान की नसीहत से फ़ायदा ले लो। आयत 17 से 21 आखरत पर अपने नफ्सों में से दलाइल हैं, और 22 से 23 कुरान के जो अवामिर यानी डूज़ हैं उन पर अमल की दावत। आयत 24 से 32 में अल्लाह के रब होने के दलाइल हैं, और इसी से आखरत के आने की दलील। 33 से 37 क़यामत के मंजर हैं, और 38 से 42 में सालेह मोमिनीन और फाजिर काफिरों का अंजाम। पूरी सूरत का ख़ुलासा क्या है कि जो दीन की दावत लेना चाहते हैं उन पर मेहनत कीजिए, और जो नहीं लेना चाहते उनका गम छोड़ दीजिए। सूरत 4 से 5 नबी में नाजिल हुई थी, मक्की दौर था, और याद रखिए ये बिल्कुल शुरू का दौर था, अभी सहाबा की तरबियत नहीं हुई थी, वरना इब्ने मकतूम ऐसे नहीं थे कि आके बीच में बोल देते। और आप सूरत का अंदाज़ देखिए कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्ट नहीं कहा अबसा व तवल्ला, बिल्कुल वो था कोई, आप तो नहीं थे, ए नबी ये आप तो नहीं लग रहे कि ऐसा रवैया अख्तियार करें। आइए तर्जमा पढ़ें, फिर आप इसको इंशाल्लाह देखेंगे, बिल्कुल आंखों के सामने एक मंजर आने लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबसा व तवल्ला जाहुल अमा वमा युद्रीका लल्लाहु यतज़क्का। तुरशरू हुआ, यानी नागवारी का एहसास हुआ, और बेरुखी बरती इस बात पर कि वो अंधा उनके पास आ गया। अब देखिए अबसा उनके पास आया, यानी कहा आपके पास आया, तो यहाँ से भी पता चलता है कि अल्लाह अपने नबी से ये चीज़ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि वो ऐसा रवैया इख्तियार करेंगे। वमा युद्रीका लल्लाहु यतज़क्का, तुम्हें क्या खबर शायद कि वो तज़किया कर ले, यानी जो खुद भाग भाग के आता है वही अपने आप को बदलता है। यज़क्कर फतन्फा हो ज़िक्रा, या नसीहत पर ध्यान दे, और नसीहत करना इसके लिए नाफ़े हो। दो बातें पता चल रही हैं इससे कि नसीहत की बातों पे ध्यान देना चाहिए। कुरान पढ़ते सुनते वक्त जिस बात पे अमल की बात है उसको नोट कर लें, एक वक्त आएगा कि इंशाल्लाह अमल करना भी आसान होगा। इसके बरक्स मन इस्तग़ना, जो शख्स बेपरवाही बरतता है इसकी तरफ तो तुम तवज्जो करते हो। क्यों करते थे अल्लाह के नबी, क्या नौस बिल अल्लाह के नबी को कुफ़ार मक्का और कुरैश मक्का से दौलत चाहिए थी, शोहरत चाहिए थी, वाबा चाहिए थी? नहीं, आपकी एक ही तड़प थी कि इनके दिल में ख्याल है कि हम बड़े लोग हैं तो ज़रा इनको तवज्जो दूँ। देखिए एक सच्चे दाई दीन के दिल में ना तो दौलतमंद की मरूबियत होती है और ना गरीब की गुरबत होती है, उसके लिए सब बराबर होते हैं, लेकिन वो मौके से फ़ायदा उठाना चाहता है कि जिनकी ज़िंदगी में ये मौके कम आते हैं हम उनको फ़ायदा दे दें। तो अपनी जगह देखा दे तो अल्लाह के नबी का ये अमल जो था ये कोई बुरा नहीं था, आज भी इस तरह करना चाहिए। मिसाल है कि किसी जगह स्टूडेंट्स भी हैं और लिसनर्स भी हैं, किसको अहमियत दें? स्टूडेंट्स को तो वो तो जमे हुए ठुके हुए लोग होते हैं, लेकिन जो गेस्ट होते हैं उनको अच्छी जगह मिलनी चाहिए, उनको अहमियत देनी चाहिए, और उनको वेलकमिंग स्टाइल से बात करें, उनको अजनबियत ना लगे। आप जब एक जगह पे आते जाते हैं आपको तो अपना घर लगता है, लेकिन नए आने वाले को तो हो सकता है कि बाथरूम का रास्ता भी ना आता हो। तो लिहाजा ये खूबसूरत मैनर्स हैं इसके अंदर कि अपने आप को इस चीज़ में रखें। असल जिस चीज़ से रोका गया ना वो ये है कि आप दूसरों को सुनाने के शौक़ में इतने भी नीचे ना गिर जाओ कि सुनने वाले सोचे पता नहीं इनका ही कोई फ़ायदा, ये हमारे इतना पीछे क्यों पढ़ते हैं, ये किसी फ़कीर की सदा नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है, बल हुआ कलामुल्लाह। तो एक रिस्पेक्टफुल अंदाज से दीन की तबलीग करो क्योंकि तुम्हें इस चीज़ से बाद में फ़ायदा होगा। फिर फरमाया हालांकि अगर वो ना सुधरे तो तुम पर इसकी क्या जिम्मेदारी है, और वाकई सच है। अगर अबू जहल मुसलमान नहीं हुआ तो अल्लाह के नबी से कोई पूछा जाएगा क़यामत के दिन कि वो क्यों नहीं मुसलमान हुआ? और जो ख़ुद तुम्हारे पास दौड़ा आता है और वो डर भी रहा होता है, इससे आप बेरुखी बरतते हो? हरगिज़ नहीं, ऐसा ना करो। देखिए कितना प्यार आते अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम, नबीना थे, और अल्लाह उनके लिए कह रहे, वो दौड़ रहे हैं, तड़प थी, हमें भी दुआ करनी है अल्लाह, जो एक नाबीना शख्स को तड़प लगी हुई थी वो हमें भी लगा दे। फरमाया, कल्ला, हरगिज़ नहीं, इन्नहा तस्किरा, ये कुरान, ये खूबसूरत कुरान जो मेरे आपके हाथ में, एक नसीहत है, ये एक शाही कलाम है, ये कोई छोटी बात है, ये कोई गरीब की बात है, कोई फ़कीर की सदा है, ये किसी कमज़ोर हस्ती की बात है, नहीं, तंजीलों में रब्बिल आलमीन। तो अब क्या करो, फमन शाह ज़करा, बस अब जिसका दिल चाहे इसको कबूल करे। आखिर लिखा नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हिडन मैसेज यही है कि जिसका नहीं दिल चाहता वो ना करे, वो कुछ और कबूल कर ले, ये मुराद है। कहाँ से आया ये, फ़ी सुखुफ़ मुकर्रमा मरफ़ूअत मुतहरा बेईदी सफ़रा किरा मिम्बररा, ये ऐसे सहीफ़ों में दर्ज है जो मुकर्रम है, यानी इज्जत वाले, बुलंद मर्तबा है, पाकीज़ा हैं, मुअज़्ज़ज़ और नेक कातिबों के हाथों में रहते हैं। आज किसके हाथों में? आपके और मेरे। अपने कुरान को छुएं, इससे प्यार करें। अल्लाह, तूने हमारे इन गुनाहगार हाथों को इस कुरान के काबिल कर दिया। आपको तो गैर मुस्लिम अरबी कुरान के सफ़ों को नहीं छू सकता, टच नहीं कर सकता एक जुम्बी शख्स। आप और मैं ईमान के साथ, तहारत के साथ बैठे हैं, तभी इसको पढ़ रहे हैं ना। ये अल्लाह की शान है कि उसने आपको, मुझे ये कुरान दिया। आप देखिए, कभी आपने नॉर्वेजियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो जो एक ओरिजिनल नुस्खा है वो कभी देखा? छूना तो दूर की बात है। मैंने यूएसए में इतने साल रहकर एक दफ़ा नहीं, अमेरिकन लॉ जो उनकी पार्लियामेंट में, वाशिंगटन में, या जहाँ भी रखा हुआ, जाके उन्होंने मुझे तो नहीं कहा देखो टच कर लो, देख लो इसमें क्या क्या है। मान रहे हैं, कोई देता है आपको मुझे अपने लॉस? आप किसी मुल्क में रहते हैं, किसी इदारे में, किसी स्कूल में, कि आपने कभी उनकी पॉलिसीज़ के पेपर्स खोल खोल के पढ़े? अल्लाह ने आपका मेरा मैनुअल ऑफ लाइफ हाथ में दे दिया, ले लो बस। अल्लाह ने तो फरिश्तों की महफिल दे दी। आप देखिए, ये जो बात है ना कि किराम इम्बररा, ये इन लीड्स हैं, फरिश्ते छोटी मखलूक नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं, जो फरिश्तों के हाथ में था वह इंसान तेरे हाथ में मैंने दिया तो था, लेकिन तूने क्या किया। कुतिल अल इंसान उमा अकफरा, मारा जाए इंसान, तू कैसा मुनकर हक है, कितना ना शुक्र है। किस चीज़ से अल्लाह ने इसको पैदा किया? नुतफे की एक बूंद से अल्लाह ने इसको पैदा किया, फिर इसकी तकदीर मुकर्रर की, फिर इसके लिए ज़िंदगी की राह आसान की, दुनिया में आने का रास्ता। आ सकता है बच्चा दुनिया में अगर अल्लाह ना चाहे? लेकिन दुनिया से आए, माँ के पेट से बस आए थे, सुम्मा अमातहू फ़अक़बरा, फिर इसे मौत दे दी और कब्र में पहुँचा दी। अगर आप इस सुम्मा को हाईलाइट करें ना, ये आपका मेरा लाइफ स्पैम है। माँ के पेट से निकलने से लेकर कब्र तक जाने के वक्त को अल्लाह ताला ने कहा सुम्मा, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100, कितना को लंबा सुम्मा होगा हमारा। अमाता हूँ, फिर मार दिया, फकबरा, फिर उसको कब्र दे दी। ये कौन सी बड़ी बात है कब्र दी? आप देखिए कि अल्लाह अगर हमारी लाशों को गलने सड़ने देता, क्या हम शक्ल दिखा सकते किसी को? ज़रा सी घर में कोई चीज़ ख़राब हो जाए ना तो सड़ांध आने लगती है। ट्रैश अगर ओवर नाइट घर में पड़ा रहे, मैं तो कभी किसी के घर में जाऊँ ना, अगर वहाँ किचन की बिन में ट्रैश हो तो अंदर घुसते ही पता चल जाता है कि यहाँ कुछ छिलके पड़े हुए हैं। कि ओवर नाइट घर में ट्रैश होना ही नहीं चाहिए, किसी के भी नहीं होना चाहिए। और कहाँ इंसान की लाश गले सड़े। कभी कब्रिस्तानों से गुजरते हुए आपको बू आई? मट्टी में मट्टी मिल गए, मुट्ठी भर खाक है। अल्लाह कहते हैं आजजी रखो, ये मट्टी है जिसको मैंने खूबसूरत शक्ल दे दी, वरना तुम हो क्या, तुम्हें अल्लाह ताला ने क्या दिया था। अल्लाह ताला हैरत करते हैं इंसान के साथ कि देखो तो सही, किस तरह, अगर किसी की लाश किसी के घर में हो तो 4 दिन के बाद हमसाए फ़ोन करते हैं पुलिस को कि इस घर से स्मेल आ रही है, लेकिन मट्टी को एंटीसेप्टिक कर दिया, मट्टी में मट्टी मिलती है और इंसान की लाश घुल घल के ख़त्म हो जाती है चंद दिन में, और जिसको अल्लाह रखना चाहे उसकी रहेगी। सुम्मा इज़ा शान शारा, फिर जब चाहे वो इसको दोबारा खड़ा कर दे। कल्ला, हरगिज़ नहीं, लम्मा, इसने, यकदिमा मरा, वो फ़र्ज़ अदा ही नहीं किया जिसका इसको अल्लाह ने हुक्म दिया था। हम अपने फ़राइज़ पे नज़र डालें, सारी नमाज़ें पूरी हैं, रोज़े पूरे हैं, ज़कात पूरी दे दी, विरासत में कोई कमी बेशी करके तो नहीं दी लोगों को? क्या क्या फ़र्ज़ है हमारे सरों पे पड़े हुए, हज कर लिए हमने, फ़र्ज़ है हम पे। जिस नेकी के करने का अल्लाह ने हमें मौका दिया और हमने उसकी नियत की, क्या उस कमिटमेंट के फ़र्ज़ को निभा लिया? अगर नहीं है तो दुआ कर लें कि अल्लाह अभी मोहलत दे दे। अब आगे गौर व फिक्र, फल यंजुरिल इंसानु इला तामी, फिर ज़रा इंसान अपनी खुराक को तो देखे। क्या खाते हम? सिर्फ एक दिन का आप अपना डाइनिंग टेबल देख लें, इफ्तारी के वक्त का खाने के एक बफे को देख लीजिए, किसी होटल के बफे टेबल को जाके देख लीजिए, 40-40 डिशें होती हैं। हमने खूब पानी गिराया, फिर ज़मीन को अजीब तरह से फाड़ा, फिर इसके अंदर गल्ले उगाए और अंगूर और तरकारियाँ और जैतून और खजूरें और घने बाग और तरह तरह के फल और चारे तुम्हारे लिए और तुम्हारे मवेशियों के लिए सामान्य जीस्त के तौर पे। कभी देखा आपने क्या कुछ अल्लाह ने हमारे लिए पैदा किया? बस अभी आयतों पे गौर कर लीजिए कि अल्लाह ने इतना कुछ दे दिया तो जन्नत में वो अपने बंदों के लिए क्या तैयार करेगा। और अल्लाह ताला हमें कदर दे, लेकिन अब ये सब कुछ ख़त्म होना है एक दिन। फ़ैज़ा जाते सौखा यौम यफ़िर्रुल मरु मिन अखीह व उम्मीही व अबीह व साहिबतीही व बनीह। आखिरकार जब वो कान बहरे कर देने वाली आवाज़ बुलंद होगी। बहुत ज़्यादा शोर में जब रहते हैं ना लोग तो डेफ हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं। क़यामत का एक ही धमाका इतना तेज़ होगा कि कानों के पर्दे फाड़ देगा। उस रोज़ इंसान अपने भाई और अपनी माँ और अपने बाप और अपनी बीवी और अपनी औलाद से भागेगा। अपने अपने कुरान में नाम लिखें, भाई के नीचे अपने भाइयों के नाम अभी लिखें, माँ के नीचे माँ का नाम लिखें, बाप का, बीवी का और औलाद के नाम लिखिए। औलाद के नाम लिखते हुए तो आंसू निकल ही आएंगे, सबसे भागेंगे। क्यों? लिकुल इमरी मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग्नी। इनमें से हर शख्स पर उस दिन ऐसा वक्त आ पड़ेगा कि इसे अपने सिवा किसी का होश नहीं होगा। जब अपनी जान को पड़ी हो तो कौन देखे? सर अपना दुख रहा है तो बच्चे को कौन देखे और शौहर को कौन पूछे? ये है मोहब्बतों की कैंची कटेगी। क़यामत ने मोहब्बतों की सारी कैंचियाँ काट देनी है, रिश्ते टूट जाने हैं जिनके खातिर आज हम दुनिया में अपने आप को भी दुखी करते हैं और अल्लाह के दीन से भी दूर रहते हैं ना। कितनी नमाज़ें कज़ा की इन रिश्तों के लिए, कितनी नाफरमानियाँ की इनको खुश करने के लिए। अल्लाह ताला कहते हैं ज़रा सोचो तो सही। वजूह हुई यौमइज़िन मुस्फिरा दाहिकतुम मुस्तबशिरा। कुछ चेहरे उस रोज़ दमक रहे होंगे, हशाश बशाश और खुश व हुरम होंगे। ये कौन होंगे? जिन्होंने दुनिया में हर रिश्ते को उसकी जगह पर रखा, जिन्होंने सबसे ऊपर अल्लाह को रखा, हुब को अहब में बदला। किसी इंसान का कोई मुतालबा, किसी इंसान की कोई चीज़ अल्लाह के हुक्म से टकराई तो सॉरी कहकर उससे किनारा कशी कर ली। और कुछ चेहरे वजूह हुई यौमइज़िन अलैहा गबरा तरहकुहा कतरा उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा। और कुछ चेहरों पर उस रोज़ खाक उड़ रही होगी, जिसको हम कहते हैं ना हवाइयाँ उड़ी होंगी। कब उड़ती हैं हवाइयाँ? काम ना किया हो, एकदम मेहमान आ गया, अभी खाना भी नहीं पका, इम्तिहान देने की तैयारी कोई नहीं थी और इम्तिहान का वक्त आ गया, हवाइयाँ उड़ जाती हैं लोगों की। और कलोनस छाई होगी, काले हो जाएंगे, गम से रंग काला हो जाएगा। उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा। यही काफिर और फाजिर लोग होंगे। जिस रब ने इतना प्यारा जहान दिया, जिसकी खाते थे पीते थे, जिसकी चीज़ों को ले लेकर जीते थे, उसी को न पहचाना। देखिए ऐसे शख्स को आप क्या कहेंगे जो सारी दुनिया को घूम फिर के देख ले और उसके गुण गाए, लेकिन जिसने बनाया उसको माने ही ना। आई डोंट थिंक्स देर इज़ अ गॉड। मैं किसी खुदा को नहीं मानता, होगा कोई, इट्स फाइन। तिलावत सुनते हैं और फिर साथ साथ अपना मुहासबा करेंगे। और ख़ास तौर पर ये जो आखिरी आयत है ना, ये तो दिल को उदास कर देती हैं, तन्हाई का एहसास होने लगता है।
فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبارة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
اللہ تعالی ہمیں اس دن کے برے انجام سے بچائے. اگلی سورت تکویر ہے, 29 آیتیں ہیں, مکی سورت ہے, 5 اس کے ٹاپک ہیں. آیت 1-6 میں قیامت کے ابتدائی مرحلے کی تصویر کشی ہے, 7-14 میں قیامت کے دوسرے مرحلے کی تصویر کشی ہے, آیت نمبر 15-21 میں قرآن شیطانوں کی طرف سے نہیں ہے اس بات کا ذکر ہے, آیت 22-25 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجنوں نہیں تھے, اور آیت 26-29 قرآن تمام کائنات کے لیے نصیحت ہیں. پٹ فائن تصخبون, تم کدھر جا رہے ہو, تمہاری کیا مصروفیات ہیں, تمہیں کیا غم اور ہم لگے ہیں. پوری سورت کا تھیم قیامت کی ہولناکی سے خوف زدہ کیا گیا, اور ماحدرت جو حاضر کیا جائے گا آخرت کے لیے اس کی تیاری کرو. یہ سورت مکی دور کے پہلے دور میں سن 3 ہجری 90 تک, یعنی شروع سے لے کر 3 سال جو تھے اللہ کے نبی کی نبوت, اسی میں نازل ہوئی. اسلام کی دعوت خفیہ تھی, اور اس کے بعد پھر ابھی تک وہ ریئیکشن نہیں تھا جو پہلے تھا, لیکن ان آیتوں میں دیکھیے کتنے خوبصورت طریقے سے ان کا عقیدہ آخرت پختہ کیا گیا. اور اب دیکھیں گے کہ اب ساری آلموسٹ مکی صورتیں آئیں گی, اور ان سب میں توحید, رسالت اور آخرہ کی بات ہوگی. ہر نئے بندے کو کوئی بات بتانی ہے تو بس یہ بتائیں کہ اللہ کون ہے, رسول کون ہے, اور تم نے اس کے بعد کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق دے. آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت. ایسے لگتا ہے کہ ایک آیت کے بعد رکنا مشکل لگتا ہے, بالکل ایسے محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے میرے لیے ایک خوبصورت سی لڑی پرو دی ہے. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور تارے بکھر جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے, امیجن کریں, سورج لپیٹا تو اندھیرا ہو گیا, ستارے جھڑ گئے تو اور بھی ڈاک ہو گیا, پہاڑ چلنے لگے تو پتہ نہیں کون ہمیں نیچے دبا دے گا, اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی, اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے, یعنی جانور شہروں میں آ جائیں گے اور انسان جنگلوں کا رخ کریں گے, گھبراہٹ بکلاہٹ. وایذ البحار سجرت وایذ النفوس زوجت وایذ الموءودۃ سئلت. اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے, اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی, موت کی صورت میں جان جسم سے ٹوٹتی ہے, دوبارہ اس دن جا کے جوڑ دی جائیں گی. جب زندہ گاڑی بھی لڑکی سے پوچھا جائے گا, تو کس قصور میں ماری گئی, تیرا قصور کیا تھا. عرب لوگ جس معاشرے میں تھے وہاں بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے, کہتے تھے کہ بیٹی آتی ہے تو سر جھکنے لگتا ہے. ایک ایک شخص کتنی کتنی بچیوں کو مار دیتا تھا, اس کا آپ کو اندازہ ایک حدیث سے ہوگا. قیس بن عاصم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر میں نے پوچھا, اللہ کے نبی, میں نے اپنی جاہلیت میں 8 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہے, ایک کے بعد ایک, یعنی ایک پیدا ہوئی اس کو مارا, دوسری پیدا ہوئی, تیسری ماری, اب کیا کروں. آپ نے فرمایا, ہر ایک کے عوض ایک غلام آزاد کرو. کہا, میں تو اونٹوں والا ہوں. تو آپ نے فرمایا, اچھا اب ہر ایک کے بدلے میں ایک اونٹ قربان کرو. اپنی بیٹی کو کوئی قربان کر دے, کانوں کو یقین آتا ہے یہ بات سن کے. لیکن یہاں سے آپ دیکھیے کہ معاشرے کے رسم و رواج اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ بیٹیوں کی محبت تک دل سے ختم ہو, یہ سب رسم کے نام پہ کرتے تھے. آج بھی لوگ رسم و رواج کے نام پر اتنے خرچے کر لیتے ہیں, کیا کچھ کام کرتے ہیں, ان کو برا نہیں لگتا. تو معاشرے کا اثر انسان کے ذہن پر اللہ کے حکموں سے زیادہ ہوتا ہے, یہ سمجھ آ رہی ہے. اور کس طرح مارتے ہیں. اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے پاس میری بیٹی تھی, جب پیدا ہوئی تو نہیں مارا, کچھ لوگ تھوڑی دیر کے بعد مارتے تھے. جب میرے ساتھ چلنے والی ہوئی اور میرے سے بہت محبت کرتی تھی, تو ایک دن اس کو لے کر میں چلا, پھاوڑا پکڑا, ابا کہاں جا رہے ہو, ابا کہاں جا رہے ہو, کہا چلو چلو میرے ساتھ. اور وہ خوش ہو رہی ہے, ہم جنگل میں جا رہے ہیں, وہاں جا کے کہتے ہیں میں نے گھڑا کھودنا شروع کیا. وہ بھی اپنے معصوم ہاتھوں سے بیٹھ کے مٹی ہٹانے لگ گئی, اور جب وہ گھڑا اس قابل ہو گیا کہ اس میں جائے, تو میں نے اس کو اس میں دھکا دے دیا. اور آخری آوازیں اس کی میرے کانوں میں ٹکراتی ہیں, وہ کیا ہے کہ ابا کیا کر رہے ہو, ابا ابا. اور وہ بے ہوش ہو جاتے تھے, بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہوتے تھے. تو لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کو کیا ہوتا ہے, تو کہتے ہیں مجھے یہ واقعہ یاد آ جاتا ہے. آج بھی آپ دیکھیے, اس وقت الٹرا ساؤنڈ نہیں تھا, لیکن ورنہ لوگ 500 لگا کر الٹرا ساؤنڈ کرا کے बेटी को एबॉर्ट करा देते, तरीके तो वही हैं। कभी बच्चे बच्ची को एबॉर्ट ना कराएं, एबॉर्शन ना कराएं, जिसको अपनी ज़ुबान में सीधा साधा लफ्ज़ हम बोलते हैं, कभी बच्चा ज़ाया ना कराएं। अगर आपको ज़ाया कर दिया गया होता तो आप पसंद करते? ये अल्लाह के तोहफे होते हैं, जो आते हैं वो अपना नसीब लेकर आते हैं। तो सिर्फ बेटी होना कोई माँ का कसूर नहीं है। देखिए यहाँ आप अगर देखें तो इशारे मिल रहे हैं कि जिन्स बाप की तरफ से आती है। आज साइंस ने इसको बता दिया, माँ में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, बाप में एक्स वाई होते हैं। माँ में से एक्स ही आएगा हमेशा, बाप में एक्स आ जाए तो बेटी पैदा हो जाती है, वाई आ जाए तो बेटा पैदा हो जाता है। तो जिन्स किसकी हाथ में होती है अल्लाह के बाद? बाप की तरफ से आती है। तो कभी बहुओं को ताने नहीं देने चाहिए कि ये तो लड़कियां पैदा करती है और ये है और वो है। कोई मशीन है जो ख़राब हो गई और ताने दे दो और अब इसको तलाक दे दो और आगे ये है वो है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आँखें खोल दे। बहुत सारे लोग इन चीज़ों के अंदर आकर अभी तक अपने आप को उसी जहालत में महसूस करते हैं जहाँ के पहले थे। फरमाए ज़रा क़्यामत का मंजर जहन में रखोगे तो तुम्हें सब समझ आएगा कि उस दिन उस जिंदा गाड़ी ने पूछना है मेरा कसूर क्या था अब्बा। और ऐसी बच्चियां क़यामत के मैदान में खड़ी अपने माँ बाप से पूछ रही होंगी। वैज़ सुहुफ़ नुशीरत, वैज़ समा कुशीतत, वैज़ल जहीम सुईरत। जब अमलनामे खोले जाएंगे और आसमान का पर्दा हटा दिया जाएगा और जहन्नुम दहकाई जाएगी और जब जन्नत करीब ले आई जाएगी। अलिमत नफ्सुम्मा अहदरत, उस वक्त हर शख्स को मालूम हो जाएगा कि वो क्या लेकर आया है। इस पे गौर करें। आज मैं आप भेज रहे हैं, वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ मौजूद होगा। क्या लेकर जा रही हूँ ये सोचें। क्या सिर्फ गम और हम अहसन अल हदीस को छोड़कर लाहौल हदीस के पीछे फिरते हैं? आप देखिए कि दुनिया का नशा चढ़ता है ना तो क़यामत का नशा नज़र ही नहीं आता। जिसको क़यामत याद रहेगी ना, वो दुनिया में कभी भी अपने आप को पीछे नहीं करेगा। इसलिए फरमाए फला उक्सिमु बिल खुन्नस अल जवारिल कुन्नस, बस नहीं मैं कसम खाता हूँ पलटने और छुप जाने वाले तारों की, और रात की जबकि वो रुखसत हो और सुबह की जबकि इसने सांस लिया। ये वाकई एक बुजुर्ग पैगंबर का कौल है जो बड़ी ताकत रखता है। इंद ज़िल अर्शी मकीन, अर्श वाले के यहाँ बुलंद मर्तबा है, वहाँ इसका हुक्म माना जाता है और वो बाएतमाद है। जिब्राइल की खूबियाँ, मुझे तो इसको पढ़ते हुए ये बात समझ आ गई कि कुरान पढ़ने वाले को अल्लाह एक एनर्जी दे देता है। यही कहा है अल्लाह ने उनके बारे में। इतने बड़े बड़े काम करते हैं फरिश्ते और थकते नहीं, क्योंकि नेकी करने से ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है। अल्लाह ताला आपको मुझे बताते हैं कि अपने आप को इस कुरान के ज़रिए चार्ज करो, एनर्जेटिक है ये। आप देखेंगे कि जितना ज़्यादा आप कुरान पढ़ेंगे सुनेंगे उतना आपका स्टेमिना बढ़ेगा, उतना आप खुशी से सुनेंगे, और जो कम पढ़ेगा वो थोड़ी सी देर में थकने लगता है, परेशान होने लगता है। और सबसे बड़ी बात कि बाएतमाद है, जिब्राइल ने इस वही में कोई चेंज नहीं की। और अहले मक्का तुम्हारा रफ़ीक मजनू नहीं, इसने इस पैगाम बर को रोशन उफक पर देखा, जिब्राइल को देखा तो अल्लाह के नबी ने उसकी तरफ इशारा है। वमा हुवा अलल गैबी बिदनीन, और वो गैब के इस इल्म को लोगों तक पहुंचाने के मामले में बखील नहीं है। जिब्राइल ने कुछ भी नहीं छुपाया कि कुछ चीज़ कुरान की छोड़ दी हो और या कुछ अपनी बात से दे दी हो। ये किसी शैताने मरदूत का कौल नहीं। अब आप ज़रा सब तवज्जो करें, एक सवाल है, फ़ाइना तस्खबून, फिर तुम किधर जा रहे हो, ये तुम्हारे मुंह किधर है? आप देखिए ऐसे लगता है कोई सीधा जाने के बजाय ना टेढ़ा देखने लग जाए। तो माँ या बाप उसको कहते सीधा चलो, सामने बस आ रही है, रोड क्रॉस कर रहे हो, ये कौन सा चेहरा है? ये हमारे ज़िंदगी गुजारने के तरीकों की तरफ बात है। फ़ाइना तस्खबून, वट काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल डू यू हैव, तुमने ज़िंदगी गुजारने का क्या तरीका लिया? ये लिया किससे है? बीबी फातिमा से, आयशा से, हाजरा से, आसिया से? कौन है तुम्हारे रोल मॉडल जिनके पीछे लग लग के तुम अपनी ज़िंदगी के नक्शे बदल रहे हो? ये किन की सुन्नतें हैं? ये मोहम्मद सल्लम की सुन्नतें तो नहीं हैं कि जो लोगों ने आज अपनाई हुई हैं। फ़ाइना तस्खबून, तो फिर इस रुख कैसे सीधा होगा? इसका जवाब अगली आयत में, इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। ये कुरान तो सारे जहान वालों के लिए एक नसीहत है, था सारे जहान के लिए, लेकिन आज मेरे और आपके हाथ में है। हम कहते हैं ये मुसलमानों की किताब है, कौन देगा सारे जहान को? जो तड़पेगा, जो रोएगा, जिसको अपनी हर एक्टिविटी के बाद किसी को इस्लाम से मरूब करना है। किसी को खाना दो, इस्लाम की मोहब्बत आ जाए। किसी को कपड़ा दो, उसको इस्लाम अच्छा लगे। किसी को रहने का ठिकाना दो, इस्लाम इस्लाम इस्लाम। ये तड़प देता है कुरान, फिर आप सो नहीं सकते, फिर आपके लिए फारिग रहना ज़िंदगी का सबसे मुहाल काम होता है। फिर ज़िंदगी के अंदर आपको महसूस होता है कि अभी तो सारे जहान को देना है, तुम में से हर एक शख्स के लिए जो राह रास पर चलना चाहता हो। वमा तशाउन इल्ला यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन, और तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन न चाहे। तकदीर की डोरियाँ उसके हाथ में हैं, औलाद किसको मिलनी है किसको नहीं मिलनी ये उसका फ़ैसला है, हिदायत किसको मिलनी है किसको नहीं मिलनी ये उसका फ़ैसला है। मुझे आपको तो बस ये करना है कि अपनी चाहत को अल्लाह की चाहत पर डाल दें। खुश रहने का राज है रदी तो बिल्लाह रब्बन, जो अल्लाह ने आपके मेरे लिए नसीब में रख दिया उस पर राज़ी हो जाए। जब तक आप और मैं अल्लाह ताला के दिए हुए रिस्क, औलाद, माल, इल्म और जो कुछ दुनिया की ज़रूरियात है उस पर राज़ी नहीं होते, हम खुश नहीं रह सकते। और वो कहते ना कि एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, तू लगा दे उस पे अपनी ज़िंदगी को जो मेरी चाहत है, तो मैं वो भी तुझको दे दूँगा जो तेरी चाहत है। और अगर तूने मेरी चाहत छोड़कर अपने आप को खपाया उसमें जो तेरी चाहत है, तो वो भी नहीं तुझको दूँगा जो तेरी चाहत है, वही होगा जो मेरी चाहत है। मफहूम है एक पोइम भी और हदीस कुदसी तो एक बाकायदा हदीस है। तो क्या मैं और आप अल्लाह की चाहत के मुताबिक नहीं बन सकते? तड़पें, रोएं कि अल्लाह मुझे चुन, अल्लाह प्लीज़ मुझे चूज़ कर, क्योंकि तू चुनता है तो तू चुनता है, तू तो खुद कह रहा है कि मैं ये काम करूँगा। और आप देखिए कि हमारे घरों के इर्द गिर्द आग लगी हो तो हमारे घर कब तक बचेंगे? फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे, पानी डालेंगे, कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मामला सीधा हो जाए। अल्लाह ताला मुझे आपको इसकी तौफीक दे कि आज दुनिया में तड़पने वाले बन जाएं।